रात के 1:30 बजे हैं। आप अपने घर पर अकेले सो रहे हैं, तभी बाहर से कोई आपका नाम लेकर आपको पुकारता है। आपकी नींद खुल जाती है। पहले आपको लगता है कि ये महज आपका वहम है, लेकिन आवाज फिर से आती है, यानी बाहर वाकई में कोई है। आखिर कौन? आवाज थोड़ी जानी पहचानी है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते हैं कि इतनी रात को कौन हो सकता है। जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो वहां कोई साया नजर आता है, जैसे कोई इंसान खड़ा हो जो आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा है, बस चुपचाप खड़ा है। तो आप क्या करेंगे? चेक करने बाहर जाएंगे? सोचिए, क्या करेंगे आप? अनंत तो बाहर चला गया था। अनंत कौन? अरे, इस कहानी का नायक अनंत। अगर आप पहली बार वो कहानियां पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो कृपया यहीं रुक जाएं। इस एपिसोड को ना सुने। इस कहानी को ढंग से समझने के लिए जरूरी है कि इसे शुरू से सुना जाए। धन्यवाद। वो कहानियां शो धूम्रपान, मद्यपान या किसी और प्रकार के व्यसन का समर्थन नहीं करता है, और ना ही किसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़िवादी विचार को बढ़ावा देता है। ये शो केवल कहानियों की एक श्रृंखला है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। श्रोताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट वो कहानियां। प्रस्तुत है सीजन 2 की दूसरी कहानी, कालशंकु, दूसरा अध्याय, भाग 4। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट मोहित अग्रवाल। पिछले एपिसोड से आगे, अनंत को जब पता लगा कि जिसे वो कोई साया, कोई इंसान समझ रहा था, वो तो बस कुछ सफेद रंग के कबाड़ से भरे प्लास्टिक के कट्टे थे जो रात को एक इंसान होने का भ्रम दे रहे थे, उसे हंसी आ गई। वो वापस लौटने लगा, मगर उसकी नींद उचट चुकी थी, इसलिए वो बाहर निकलकर टहलने लगा, इतनी रात को भी। तभी उसे अपनी तरफ एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, और जब वो मोटरसाइकिल उससे थोड़ी दूरी पर ही रुक गई तो उसे खतरे का एहसास हुआ। मोटरसाइकिल से एक शख्स उतरा और उसने पीड़ी सुलगा ली। माचिस की रोशनी में उसके चेहरे को देखकर अनंत की रूह कांप गई। उसे लगा कि वो उस शख्स को जानता है, मगर काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसका नाम याद नहीं कर पा रहा था। न जाने क्यों अनंत को डर लगने लगा। उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई। तभी उस शख्स ने अनंत को आवाज दी, पिएगा? अनंत समझ नहीं पाया था, इसलिए उसने कहा, जी। उस शख्स ने रौबीली आवाज में कहा,
मैं कह रही हूं बीड़ी पिएगा? पिएगा बीड़ी?
अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में उस शख्स ने आगे कहा,
नहीं पिएगा, जहरी भी लाओ कहीं का, बबूती बल्ली की बीड़ी भी ना झेल सके है तू।
बबूती बल्ली? अनंत ये नाम सुनते ही कांप उठा। उधर वो शख्स अपने मुंह में बीड़ी दबाए मोटरसाइकिल पर रवाना हो गया। अनंत पसीने पसीने हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस बबूती बल्ली को वो कैसे जानता है। डर के मारे उसका बुरा हाल था। वो तेजी से भागकर अपने फ्लैट में गया और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया। अभी जो कुछ हुआ उसे वो समझ नहीं पा रहा था। तभी उसकी निगाह फिर से अपने फोन पर गई। फोन की स्क्रीन देखते ही वो उलझन में पड़ गया। ये क्या, अभी भी 1:30 बजे हैं, मगर अभी 10 मिनट पहले भी तो यही टाइम हुआ था। तभी तो 1:30 बजे थे। क्या मैंने उस वक्त गलत टाइम देखा था, या मैंने कोई सपना देखा है? मगर सपना देखा है तो भी भभूती बल्ली, आखिर कौन है ये? अनंत बुरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने एक बार फिर से फोन की स्क्रीन पर निगाह डाली। फोन में अब 1:31 हो रहे थे। वो किसी निर्णय तक पहुंचने की स्थिति में नहीं रहा था। इसी कश्मकश के बीच वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। 12 फरवरी 2019 रात को घटी रहस्यमयी घटना के बाद अनंत काफी देर तक सो नहीं पाया था, लेकिन एक बार नींद आने के बाद वो देर तक सोता रहा। सुबह कोई 11 बजे वो नींद से जागा था। नींद खुलने के बाद रात वाली बात फिर से उसके दिमाग में घूमने लगी। अभी भी वो इस कश्मकश में था कि रात को जो कुछ हुआ वो सपना था या हकीकत। इसी वजह से वो उठकर सबसे पहले अपने फ्लैट से निकलकर बाहर दीवार के पास उसी जगह गया जहां उसे किसी इंसान के होने का भ्रम हुआ था। वहां अभी भी कबाड़ भरे प्लास्टिक के सफेद रंग के कट्टे रखे थे जो वाकई अंधेरे में किसी इंसान के होने का भ्रम पैदा कर सकते थे। कुछ देर वहां गुमसुम से खड़े रहने के बाद वो सड़क पर उसी जगह पहुंच गया जहां उसका सामना मोटरसाइकिल सवार शख्स से हुआ था। क्या नाम था उसका? हाँ, भभूति पल्ली, यही नाम तो बताया था उसने। अनंत वहां खड़ा रात वाली बात याद करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी नजर पास में खड़े गार्ड पर गई। वो उसकी तरफ बढ़ चला। गार्ड उसे देखते ही अपनी जगह से खड़ा हो गया। अनंत ने पूछा, गार्ड साहब कैसे हो? गार्ड ने जवाब दिया, सर बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे। अनंत ने कहा, हाँ काम के सिलसिले में बाहर था, कल ही आया हूं। कहिए साहब, कुछ काम है आपको?
नहीं बस ऐसे, मैं तो बस रात की ड्यूटी के बारे में जानने आया था। रात को कौन था ड्यूटी पर?
साहब रात वाला गार्ड जीवनलाल छुट्टी पर है, इसलिए मैं ही था।
क्यों, क्या हुआ?
अनंत ने बात को छिपाते हुए कहा।
नहीं बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि रात को कोई मुझसे मिलने आया था क्या, असल में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे आवाज दे रहा हो।
अनंत की बात सुनकर गार्ड को कुछ ताज्जुब हुआ। अनंत ने आगे कहा,
ये रात को कोई 1:30 बजे की बात होगी, शायद कोई मेरा नाम लेकर मुझे आवाज दे रहा था, शायद।
अनंत की बात सुनकर गार्ड ने अजीब सा चेहरा बनाया, फिर कुछ सोचते हुए कहा,
नहीं साहब मैं रात भर यहीं गार्ड रूम में ही था, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं थी।
आपको पक्का यकीन है कि आपने आवाज सुनी थी?
गार्ड ने जिस विश्वास के साथ बात कही थी उसके बाद अनंत के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसलिए उसने टालते हुए जवाब दिया,
नहीं नहीं मुझे बस ऐसा लगा था।
गार्ड आगे कुछ और कहे इससे पहले अनंत अपने फोन में कुछ देखते हुए वहां से चला गया। 2 बजे अनंत चैनल के ऑफिस में शूट किए वीडियोस देख रहा था। काम से फ्री होने के बाद उसने सुशांत को फोन मिला दिया। काफी देर तक घंटी जाने के बाद भी उसने फोन नहीं उठाया। उसने फिर से सुशांत को फोन किया, लेकिन जब दूसरी बार भी उसने फोन पिक नहीं किया तो उसने उसे कॉल मी का टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। लेकिन जब थोड़ी देर तक मैसेज का भी कोई जवाब नहीं आया तो उसने राज का नंबर डायल किया। घंटी जाने के बाद भी राज ने फोन नहीं उठाया तो अनंत ने फोन काट दिया और झुंझलाट से कहा,
आखिर चल क्या रहा है?
अनंत फिर से कंप्यूटर पर शूटिंग के वीडियोस देखने लगा। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने अपने लैपटॉप पर गूगल खोल लिया। एक बार गूगल पर सर्च करके देखता हूँ, भभूति बल्ली नाम से कुछ मिलता है क्या। गूगल पर काफी सारे रिजल्ट्स थे लेकिन उसे अपने काम का कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसने फिर से नए कीवर्ड्स के साथ इस नाम को बार बार सर्च किया तो उसे भभूति बल्ली तो नहीं लेकिन बल्ली नाम पर कुछ जानकारी मिलने लगी।
ये क्या है?
कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट लगती है, इसमें बल्ली जनजाति का नाम मेंशन किया गया है। अनंत इस वक्त सरकार के समाज कल्याण विभाग की योजनाओं से संबंधित कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था। समाज कल्याण विभाग की योजना के तहत बल्ली समुदाय के संरक्षण और विकास के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, मगर भभूति बल्ली वो कौन है? अनंत गहरी सोच में डूब गया और वहां से उठकर बाहर चला गया। अनंत की आदत में शुमार था कि जब कभी वो किसी उलझन में होता तो बरबस ही सिगरेट जला लेता था। आज भी उसने सिगरेट जला ली और 1-2 कश खींच लिए, मगर पता नहीं क्यों इसके आगे उसका मन नहीं किया और उसने बीच में ही सिगरेट को फेंक दिया और वापस से ऑफिस में आ गया। वो वापस से गूगल पर सर्च करने लगा
तभी नलिनी की आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बिजी हो? अनंत वाकई में अपनी उलझनों को सुलझाने में इतना बिजी था कि उसे नलिनी के आने का पता तक नहीं लगा। उसने नलिनी की तरफ देखा जो अपने हाथ में दो कॉफी मग लिए उसकी तरफ देख रही थी। ये लो कॉफी। नलिनी ने एक कॉफी मग अनंत की तरफ बढ़ा दिया। अनंत ने मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया और कॉफी के घूंट पीने लगा। नलिनी को अनंत का व्यवहार आज भी कुछ अजीब लग रहा था। उसने पूछा, एवरीथिंग फाइन? अनंत ने जवाब दिया, यस एवरीथिंग फाइन। अनंत का जवाब सुनकर नलिनी ने उसकी तरफ कुछ इस तरह देखा कि अनंत को समझ आ गया कि उसका झूठ पकड़ा गया है। इसलिए उसने कहा, यार एक्चुअली मैं नेट पर कुछ ढूंढ रहा हूं। क्या ढूंढ रहे हो? थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओके, फिर भी? आखिर अनंत ने कहा, भभूति बल्ली। व्हाट? नलिनी यह सुनकर चौंक पड़ी, फिर हंसने लगी। अनंत ने कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? जवाब में नलिनी ने कहा, नहीं, हंसने की बात यह है कि तुमने जिस तरह से यह नाम लिया है, ऐसा लग रहा है कि तुम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो। अनंत ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। हाँ यार, सब कुछ बड़ा कंफ्यूजिंग है। आई कांट एक्सप्लेन। वो तो लग ही रहा है, तुम कल भी बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे थे, आज भी। सब ठीक तो है ना? इस ट्रिप में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? तुम जैसा बिहेव कर रहे हो उससे यह साफ पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है। अनंत ने नलिनी के बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी कॉफी के घूंट पीता रहा। नलिनी ने आगे कहा, अनंत, वी आर फ्रेंड्स। इवन मुझे लगता है कि अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। अनंत ने नलिनी की तरफ देखा, लेकिन वो अभी भी अनिर्णय की स्थिति में था। नलिनी ने मुस्कुराकर कहा, तुम बता सकते हो, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी। अनंत कुछ सेकंड तक नलिनी का मुंह ताकता रहा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, यार इट्स कॉम्प्लिकेटेड। एक्चुअली जो मेरे साथ हुआ है उस पर मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं। अनंत नलिनी का रिएक्शन देखने के लिए चुप हो गया। नलिनी ने कहा, आगे बोलो, सुन रही हूं। कल रात को अजीब सा सपना आया, मुझे एक बंदा मिला। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन उसे रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा था। फिर उसने अपना नाम बताया, भभूति बल्ली। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस बंदे को काफी अच्छे से जानता हूं, लेकिन हकीकत में मैं इस बंदे से आज तक नहीं मिला। यहां तक कि यह नाम भी मैंने पहली बार सुना था। नलिनी बड़े गौर से अनंत की बात को सुन रही थी। उसने कहा, तो नेट पर क्या मिला इसके बारे में? बस यही कि वेस्टर्न राजस्थान की कोई कम्युनिटी है, गवर्नमेंट की स्कीम्स में इस कम्युनिटी का नाम मेंशन है। नलिनी के दिमाग में कुछ कौंधा। वेस्टर्न राजस्थान की कम्युनिटी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नलिनी ने कहा, तुम्हें पता है 3 महीने पहले चैनल ने इंडियन ट्राइब्स पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। आई थिंक उस डॉक्यूमेंट्री में बल्ली कम्युनिटी का नाम था। वेट अ मिनट। नलिनी ने अपने लैपटॉप पर एक फाइल खोलकर उसमें बल्ली समुदाय की डिटेल अनंत को बताना शुरू कर दी। हाँ, ये देखो, ये वेस्टर्न राजस्थान की एक वॉरियर कम्युनिटी थी। इस कम्युनिटी की सही सही हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस कम्युनिटी के लोग बड़े खतरनाक लड़ाके माने जाते थे। जितनी थोड़ी डिटेल मिली उसके मुताबिक इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया था। एक बार उनका पूरा काफिला लूट लिया था। इसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने इनके पूरे गांव चलवा दिए। उसके बाद इस कम्युनिटी के बहुत कम लोग बचे थे, और जो बचे हैं उनमें भी कईयों ने क्रिमिनल गैंग बना लिए हैं। अनंत बीच में ही बोल पड़ा, नलिनी, हाउ कम दिस पॉसिबल? मैंने सपने में जिस भभूति बल्ली को देखा था वो शक्ल से एकदम क्रिमिनल लग रहा था। इवन मुझे उससे डर लग रहा था। फिर उसने मुझे बीड़ी ऑफर की। बीड़ी? हाँ, बीड़ी। मैंने मना कर दिया तो वहां से चला गया। बस यही हुआ था। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मुझे लग रहा था कि मैं उस भभूति बल्ली को अच्छी तरह से जानता हूं। अनंत अपनी बात कहकर चुप हो गया। नलिनी ने कुछ सोचकर कहा, अनंत, ऐसा तो नहीं कि तुमने यहां चैनल में ही बल्ली कम्युनिटी के बारे में सुना हो या पढ़ा हो और फिर
नलिनी ने अपनी बात पूरी नहीं की। अनंत ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने चैनल में या कहीं पर भी इस बल्ली कम्युनिटी के बारे में कुछ भी सुना या पढ़ा था। अनंत की बात सुनकर नलिनी चुप थी, मगर ऐसा लग रहा था कि अनंत उसकी बात सुनने को बेताब था। आखिरकार नलिनी ने बोलना शुरू किया, देखो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के बारे में सुन लेते हैं मगर उस पर ध्यान नहीं देते, बाद में वही सब ड्रीम्स में दिखाई देता है। कहीं ऐसा ही कुछ तो तुम्हारे साथ नहीं हुआ? अनंत चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने आगे कहा, हो सकता है, शायद तुम सही कह रही हो। रात 8 बजे का अंधेरा गहरा चुका था। सुशांत और राज दोनों पूरा दिन पागलों की तरह उस शंकु का रहस्य जानने के लिए भटकते रहे, लेकिन अभी तक दोनों खाली हाथ थे। राज के चेहरे पर निराशा झलक रही थी, जबकि सुशांत के चेहरे पर निराशा से कहीं ज्यादा गुस्सा झलक रहा था, और इस गुस्से में इजाफा कर दिया था शहर के ट्रैफिक ने। सुबह से वो शहर की तंग गलियों में अपनी एसयूवी घुमा रहा था। बार बार लगने वाले जाम की वजह से वो बुरी तरह से जला चुका था और लगातार गाड़ी का हॉर्न बजाया जा रहा था। राज महसूस कर रहा था कि सुशांत कुछ ज्यादा ही हाइपर हो रहा है, यहां तक कि उसने आज से पहले कभी सुशांत को इतना ज्यादा इरिटेटेड नहीं देखा था। उसने सोचा कि वो सुशांत से थोड़ा संयम बरतने के लिए कहे, मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। तभी सुशांत ने एकदम से गाड़ी के ब्रेक लगाए। ब्रेक इतने जोर से लगे थे कि अगर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाए होते तो कम से कम राज तो गाड़ी की विंडस्क्रीन से जा टकरा था। राज ने अपने आप को संभालते हुए कहा, सर रिलैक्स प्लीज, बस हम शहर से बाहर ही आ गए हैं। सुशांत ने उसकी तरफ देखा और अपने गुस्से को काबू में करते हुए मुस्कुरा दिया, सर ऐसा लग रहा है जैसे हमें पैदल ही आ जाना चाहिए था। तू अब कह रहा यार, पहले नहीं कह सकता था। कहते हुए सुशांत ने गाड़ी आगे बढ़ा थी, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही फिर से उसे ब्रेक लगाने पड़े, क्योंकि रास्ते में एक आदमी ने हाथ देकर उसे रुकने का इशारा किया था। सुशांत ने झल्लाते हुए कहा, अब तू क्या चाहता है? वो आदमी गाड़ी के एकदम पास आ चुका था। सुशांत ने उसकी बात सुनने के लिए गाड़ी का कांच खोल दिया। उस आदमी ने पूछा, आप सुशांत जी हैं? हाँ बताइए। हमारे कुंवर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कुंवर साहब? उस आदमी ने जवाब दिया, कुंवर अनूप सिंह जी, फ्रांस से पढ़कर आए हैं, बड़े टैलेंटेड हैं और टैलेंटेड लोगों की कदर करते हैं। आप बड़े चैनलों के लिए फिल्में बनाते हैं, उन्हें भी यहाँ के हेरिटेज पर कोई फिल्म बनवानी है। आप बिजी होंगे मगर एक बार बस 5 मिनट के लिए उनसे मिलने। सुशांत असमंजस में था, इसलिए उसने राज की तरफ देखा। राज की आंखों में उम्मीद भरी चमक देखकर सुशांत अनूप सिंह से मिलने के लिए राजी हो गया। थोड़ी देर बाद सुशांत और राज दोनों कुंवर अनूप सिंह की हवेली में अनूप सिंह के साथ डिनर कर रहे थे। बातचीत के दौरान अनूप सिंह ने सुशांत के सामने अपनी होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस की ब्रांडिंग के लिए कॉर्पोरेट फिल्म बनाने का ऑफर रखा। अनूप सिंह के व्यक्तित्व और व्यवहार ने सुशांत और राज दोनों को काफी इंप्रेस किया, इसलिए सुशांत ने उसी वक्त वादा कर दिया कि अगली बार वो उनके लिए फिल्म जरूर बनाएगा। दोनों के वहां से जाते वक्त कुंवर अनूप सिंह ने उन्हें एक पेंटिंग गिफ्ट की। सुशांत उस गिफ्ट को लेने से इनकार कर रहा था, लेकिन उसी वक्त राज की निगाह उस पेंटिंग में बने एक निशान पर गई। उसने धीरे से सुशांत के कान में कहा, सुशांत सर, पेंटिंग के कोने में देखिए, ये वही निशान है जैसा उस खून पर बना हुआ है। राज की बात सुनकर सुशांत भी चौंक पड़ा और पेंटिंग को गौर से देखने लगा। उस पेंटिंग में उस इलाके के आर्किटेक्चर, रेत, ऊंट वगैरह के अलावा वही निशान बना था जैसा उस शंकु पर उकेरा गया था। सुशांत ने राज की तरफ देखा, दोनों के बीच आंखों के इशारे से बात हुई। उन्हें समझ आ गया था कि किस्मत फिर से उन्हें सही जगह पर ले आई है। सुशांत ने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए कुछ हिचक के साथ कुंवर अनूप सिंह से कहा, अनूप सिंह जी, वैसे तो मैं गिफ्ट लेना नहीं चाहता था, लेकिन आपकी ये पेंटिंग मुझे बहुत पसंद आई है। सुशांत ने जिस अंदाज में ये बात कही उसे सुनकर वहां खड़े सभी लोगों को हंसी आ गई। कुंवर अनूप सिंह ने कहा, मुझे पता था कि ये पेंटिंग आपको जरूर पसंद आएगी, और एक बात आपको और बताऊं, इस पेंटिंग को बनाने वाले पेंटर मेरे खास मित्र भूप सिंह इस वक्त आपके बगल में खड़े हैं। सुशांत ने चौंक कर अपने बगल में खड़े व्यक्ति की तरफ देखा। उसके लिए अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जिस पहेली के हल के लिए वो लोग
दो दिनों से भटक रहे थे, उसका हल इस तरह उन्हें मिल जाएगा, इस पर यकीन कर पाना आसान नहीं था। सुशांत ने भूप सिंह की तरफ देखकर कहा, तो आपने बनाई ये पेंटिंग? वाकई में बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। भूप सिंह ने विनम्रता के साथ जवाब दिया, जी धन्यवाद। सुशांत मौके को गंवाना नहीं चाहता था, मगर उसकी दिक्कत यह थी कि वो सब कुछ सीधे सीधे नहीं पूछ सकता था, इसलिए उसने घुमा फिरा कर पूछना शुरू किया, वाह क्या बात है, एक पेंटिंग में आपने इस पूरे शहर, इसके एम्बियंस, यहां की लाइफ को जिंदा कर दिया है। भूप सिंह ने खिसियानी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, सर ये इतना अच्छा काम भी नहीं है, मेरी निगाह में तो ये काफी हल्का काम है। भूप सिंह के जवाब ने सुशांत और राज को चौंका दिया, मगर कुंवर अनूप सिंह ने बीच में ही ठहाका लगाकर बात आगे बढ़ाई, ये भूप सिंह जी सच्चे कलाकार हैं, एकदम सच्चे कलाकार, इनको कभी अपने काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अरे पेंटर महोदय, जब सुशांत जी कह रहे हैं कि पेंटिंग अच्छी है तो मान भी लो। लेकिन भूप सिंह तो न जाने किस मिट्टी का बना था, उसने जवाब दिया, देखिए सुशांत जी, आप इस पेंटिंग की तारीफ कर रहे हैं, यह आपका बड़प्पन है, मगर मेरी निगाह में इस पेंटिंग में बैलेंस नहीं है। सुशांत ने झट से जवाब दिया, मगर बैलेंस ही तो सब कुछ नहीं होता ना, कुछ चीजें बस इसलिए अच्छी बन जाती हैं कि उनमें बैलेंस नहीं होता है। भूप सिंह ने आगे कुछ नहीं कहा, शायद वो काफी कुछ कहना चाहता था, मगर उसने सभी लोगों का लिहाज करते हुए कोई जवाब नहीं दिया। सुशांत ने आगे कहा, वैसे पेंटिंग की इंस्पिरेशन क्या रहती है आपके लिए? सुशांत का सवाल सुनते ही भूप सिंह के चेहरे पर फिर से चमक आ गई, उसने एक दार्शनिक के अंदाज में जवाब देना शुरू किया, एक माँ, उसकी गोद में एक बच्चा, पेड़ पर फूटती एक खोपल, सुबह उगता हुआ सूरज, तेज गर्मी में पसीने से नहाया एक मजदूर, जीवन की त्रासदियां, हर जगह इंस्पिरेशन मौजूद है, बस यहीं से चीजें निकल कर आ जाती हैं। भूप सिंह का जवाब सुनकर सुशांत खींच गया था, लेकिन अपने चेहरे के भाव छिपाते हुए उसने पूछा, और अगर मैं आपसे इस तस्वीर की इंस्पिरेशन की बात करूं तो? भूप सिंह फिर से हंसते हुए बताने लगा, आप बार बार मेरी दुखती रख पर हाथ रख ही रहे हैं, तो चलिए बताता हूं, इस पेंटिंग की इंस्पिरेशन है एक किताब।
एक किताब?
जी हाँ, एक किताब। एक दिन मैं यहाँ के ग्रंथालय में था, अजी वही रॉयल म्यूजियम के साथ बना हुआ है जो, एक रोज वहां कुछ किताबें पढ़ी और उन्हीं में से एक को आधार मानकर कुछ बिल्डिंग्स के फोटो, रेत, ऊंट वगैरह बना दिए। भूप सिंह ने अपना जवाब दे दिया था, लेकिन सुशांत को अपने सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला था, इसलिए उसने सीधे पूछ लिया, और ये जो निशान इस पेंटिंग में बना हुआ है ये क्या है? सुशांत ने पेंटिंग पर बने उस निशान की तरफ भूप सिंह का ध्यान खींचा, उसी वक्त कुंवर अनूप सिंह के चेहरे के भाव कुछ बदल गए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई जिसमें जल्द ही कुटिलता खुल गई, लेकिन किसी के भी ध्यान देने से पहले उसने अपने आप को सामान्य कर लिया और पेंटिंग पर बने उस निशान की तरफ देखने लगा। भूप सिंह ने उस निशान को देखते हुए कहा, अजी वो भी तो वहां उसी किताब में बना हुआ था, मैंने वहीं से टीप लिया, वो क्या कहते हैं, कॉपी पेस्ट। सुशांत को समझ आ गया था कि ये किताब उसे कहां मिलेगी, लेकिन फिर भी उसने पक्का करने के उद्देश्य से पूछा, तो ये किताब वहां ग्रंथालय में मिलेगी? भूप सिंह ने जवाब दिया, हाँ ग्रंथालय में मिल तो जाएगी, लेकिन ग्रंथालय के उस हिस्से में एंट्री नहीं है, वो तो अपने कुंवर साहब की कृपा थी जिन्होंने मुझे वहां एंट्री दिलवा दी। सुशांत को समझ आ गया था कि ग्रंथालय का रास्ता कुंवर अनूप सिंह से होकर गुजरता है, इसलिए उसने अनूप सिंह से पूछ लिया, अनूप सिंह जी मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, मैं और राज हम दोनों भी ग्रंथालय में जाना चाहते हैं, प्लीज आप हमारी एंट्री वहां करवा दीजिए। व्हाई नॉट सुशांत जी, एंड आई इंसिस्ट, आप जैसे लोगों को तो वहां जरूर जाना चाहिए। लेकिन इस निशान में कुछ खास नजर आ रहा है आप लोगों को? अनूप सिंह की बात सुनकर सुशांत सकपका गया, उसने बात को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं ये निशान तो बस ऐसे ही, मैं सोच रहा था कि इस पूरे एम्बियंस में ये निशान मैच नहीं हो रहा, तो मैंने इसके बारे में पूछा, बाकी पढ़ने का मुझे बहुत शौक है इसलिए वहां विजिट करना चाह रहा था। ओके ओके ओके, आप लोग कल सुबह 9 बजे वहां चले जाइए, आपकी एंट्री हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच अनूप सिंह जी, प्लेजर इज माइन। अनूप सिंह के यहां से निकलते वक्त सुशांत और राज दोनों सातवें आसमान पर पहुंच चुके थे। राज की हालत ज्यादा खराब थी, उसके लिए अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर पाना अब मुश्किल था। इसलिए अनूप सिंह की हवेली से थोड़ी दूर पहुंचते ही राज खुशी के मारे चिल्ला पड़ा,
यस सुशांत सर, आई कांट बिलीव दिस।
कल भी हम सारी होप छोड़ चुके थे, आखिर में अपने आप गोपाला शोरूम पहुंच गए। आज भी हम सभी जगह से खाली हाथ थे और अब हम अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच चुके हैं। सुशांत भी जोर जोर से हंस रहा था। उसने गाड़ी में म्यूजिक तेज कर दिया और उनकी गाड़ी तेजी से गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ चली। लेकिन दोनों में से किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा तक नहीं था कि वो किस खतरनाक रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे। रात को 1:30 बजने वाले थे। गेस्ट हाउस के कॉरिडोर में सुशांत अनंत से फोन पर बात कर रहा था। पिछले 15 मिनट से वो अनंत को समझा रहा था कि वो कल दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। बड़ी मुश्किल से अनंत को समझाकर उसने फोन रखा और अंदर कमरे में आ गया, जहां राज अपने फोन के कैमरा से उस शंकु में पैदा होने वाली चमक और कंपनों का वीडियो बनाने वाला था। ठीक 1:30 बजने पर शंकु में कंपन शुरू हुए और राज ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आज शंकु में होने वाले कंपन और चमक पहले के मुकाबले और भी ज्यादा थे। यहां तक कि सुशांत को एक बार भी लगा कि कहीं ये शंकु फट ना पड़े। दूसरी तरफ राज वीडियो बनाते बनाते शंकु के काफी ज्यादा करीब आ गया। तभी बाहर एक जोरदार बिजली कड़की और कमरे में भी रोशनी की तेज लहर उठी। आप सुन रहे थे काल शंकु 2 अध्याय पॉडकास्ट वो कहानियां पर। यह था 4। लेखन और आवाज दीपक मेड़तवाल, इन एसोसिएशन विद पिक्सल सिटी प्रोडक्शंस।